स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 7 मार्च और दिन सोमवार। बांग्लादेश को हराकर भारत ने किया 2020 एशिया कप पर कब्जा।
छक्का मारे महेंद्र सिंह धोनी और एशिया कप विजेता भारतीय टीम। एशिया अब जीत लिया है, विश्व जीतना बाकी है।
गुजरात से लेकर दिल्ली तक चरमपंथी हमले का खतरा, अलर्ट जारी। महिला आरक्षण मुद्दे पर मोदी की खामोशी से नाराज कई महिला नेता।
उन्होंने बहुत लंबा भाषण दिया लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी महिला आरक्षण पर, वो कुछ बोलेंगे लेकिन उसमें हम सभी के हाथ में बहुत निराशा हाथ में लगी।
कैसे हुई आजादी के नारे की शुरुआत, अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अजय शर्मा से। बांग्लादेश के मीरपुर में खेले गए एशिया कप फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। भारत के सामने 121 रनों की चुनौती थी जिसे उसने केवल 13.5 ओवर में 2 विकेट खोकर पूरा कर लिया। बारिश के कारण मैच को 15-15 ओवरों का कर दिया गया था। यूरोपियन यूनियन और तुर्की की बैठक के मौके पर यूरोप में शरणार्थी संकट से निपटने के लिए नेटो ने ईजियन सागर में अपने अभियान के विस्तार का फैसला किया है। नेटो ने कहा है कि वो ग्रीक और तुर्की इलाकों में अपने जहाज भेजेगा और यूरोपियन यूनियन की सीमा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा। चैरिटी संस्था मेडिसिन सैन फ्रंटियर्स ने उत्तरी फ्रांस में एक शरणार्थी शिविर खोलने का फैसला किया है। ये शिविर उन शरणार्थियों को घर देने के लिए है जिनके घर डंकर्क में तूफान के कारण बर्बाद हो गए थे। इस शिविर में 1500 लोगों को रखा जा सकेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की पत्नी नैन्सी रीगन की 94 साल की आयु में मृत्यु हो गई। जानकारों का मानना है कि नैन्सी ने रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति रहते हुए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था। राष्ट्रपति ओबामा के मुताबिक नैन्सी रीगन ने अमेरिका की प्रथम महिला की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट मैकफार्लिन ने बीबीसी को बताया,
मिसेस रीगन वाज अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन प्रेसिडेंट रीगन एंड हिज आइडियाज।
मिसेस रीगन का राष्ट्रपति रीगन और उनकी सोच पर काफी गहरा असर रहा। वो किसी भी और सभी स्थितियों में रोनाल्ड रीगन के साथ खड़ी रहीं और अपने पति के लिए एक संबल की तरह थीं। उनका देश के इतिहास में एक अहम स्थान रहेगा। ये थे अमरीका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट मैकफार्लेन। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी है कि अगर अमरीका और दक्षिण कोरिया इस हफ्ते अपना सालाना संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगे तो वो दोनों पर परमाणु हमले कर देगा। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसकी नज़र में ये युद्धाभ्यास उसकी संप्रभुता पर हमला है। उत्तर कोरिया की ओर से पहले भी ऐसी धमकियां दी जा चुकी हैं। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि उसने इराकी शहर हिल्ला में आत्मघाती बम धमाका किया। इस धमाके में कम 47 लोग मारे गए हैं। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि हमलावरों ने शिया मुस्लिम इलाके में मौजूद एक चेकपॉइंट पर विस्फोटकों से भरा वाहन उड़ा दिया। सीरिया के सरकारी मीडिया ने कहा है कि एलेप्पो शहर में के एक बाजार में रॉकेट दागे गए हैं। इसमें कम से कम 14 लोग मारे गए हैं। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में पिछले हफ्ते से लागू संघर्ष विराम अभी भी जारी है। अमरीकी मीडिया नेटवर्कों के मुताबिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन उम्मीदवार मार्को रूबियो प्यूर्टो रिको इलाके में जीत सकते हैं, जो उनकी दूसरी जीत होगी। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है मार्च की 7 तारीख और दिन सोमवार। कार्यक्रम की शुरुआत भारत की शानदार जीत से। भारत ने कल एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट 6वीं बार जीत लिया। बांग्लादेश के मीरपुर में खेले गए फाइनल मुकाबले में उसने मेजबान टीम को 8 विकेटों से हरा दिया। भारत की जीत में अहम योगदान के लिए शिखर धवन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत की इस शानदार जीत पर सुनिए आदेश कुमार गुप्त की ये रिपोर्ट।
भारत और बांग्लादेश के बीच कल शेरे बांग्ला स्टेडियम मीरपुर में एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया जिसे भारत ने 8 विकेट से अपने नाम किया। भारत के सामने जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य था जो उसने शिखर धवन के 60 और विराट कोहली के नाबाद 41 रनों की मदद से 13.5 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वैसे विजय शॉट छक्के के रूप में भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने लगाया।
बड़ा फाइनल, विराट कोहली नाबाद रहे चेज में और छक्का मारे महेंद्र सिंह धोनी। जी हां, छक्का मारे महेंद्र सिंह धोनी और एशिया कप विजेता भारतीय टीम एशिया अब जीत लिया है, विश्व जीतना बाकी है।
धोनी केवल 6 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 20 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने छठी बार एशिया कप अपने नाम किया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर बांग्लादेश ने निर्धारित 15 ओवर में 5 विकेट खोकर 120 रन बनाए। दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में समा बांधा महमूदुल्ला ने, जिन्होंने 13 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 33 रन बनाए।
फिर एक बड़ा शॉट और यह भी बाहर जाएगा 6 रन के लिए। चारों तरफ मैदान पे लूट मचा के रखी हुई है, पूरा बांग्लादेश मानो खुशी से झूम रहा है।
आर अश्विन ने 14 रन देकर 1 और जसप्रीत बुमराह ने भी 13 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। मैच समाप्त होने के बाद भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जीत का श्रेय ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को देते हुए कहा,
थैंक्स टू द टॉप ऑर्डर बैट्समैन, दे हैव बीन डूइंग रियली वेल। आई फील सो फार इन द
टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को धन्यवाद, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। पिछले 10 मुकाबलों में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बेहतर रूप से निभाया है, उन्होंने अच्छी शुरुआत दी। कप्तान धोनी के शब्द। फाइनल में 60 रन बनाने वाले शिखर धवन मैन ऑफ द मैच रहे। वैसे भारत ने एशिया कप अजय रहते हुए अपने नाम किया।
ये थे आदेश कुमार गुप्त। भारत ने एशिया कप तो जीत लिया है, लेकिन भारत में होने वाले वर्ल्ड 2020 टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पाकिस्तानी टीम यहां आएगी कि नहीं, अभी ये कहना मुश्किल है। टीम की सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजामों का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान की एक टीम आज भारत आ रही है। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही पाकिस्तान टीम के भारत आने को लेकर कोई आखिरी फैसला होगा। इस बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी उर्दू सेवा के हमारे साथी अब्दुल रशीद शकूर से बात की।
देखिए, जो हमें बताया गया है उसमें 3 लोग हैं, जिसमें एक FIA के उस्मान अनवर साहब हैं, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिक्योरिटी अफसर हैं कर्नल आजम, उनका नाम आया है यहाँ पे मीडिया में। और ये कहा गया है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन से एक साहब होंगे कि जो ये 3 रुकनी जो कमेटी है, जो भी वफ कह लें या सिक्योरिटी टीम है, वो वहाँ पे ICC के जो वर्ल्ड T20 मैचेस अब होने शुरू हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान के जहाँ जहाँ मैचेस हैं वहाँ वो जाकर उनके इंतजाम और चीजों को देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, और उसके बाद फिर वो अपनी जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को देंगे।
पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 में जो उनका प्रपोज प्रोग्राम है उसके हिसाब से कोलकाता, धर्मशाला और मोहाली में मैच खेलने हैं, तो क्या ये टीम तीनों जगह जाकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेगी?
बगैर तो यही लग रहा है कि वो तीनों जगह जाएंगे, मोहाली, कोलकाता और धर्मशाला। लेकिन जो असल जो तवज्जो है वो है पाक भारत मैच की, जो धर्मशाला में 19 मार्च को होना है, और उसकी बड़ी जबरदस्त एक्साइटमेंट है दुनिया भर में। जाहिर सी बात है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो जबरदस्त एक्साइटमेंट होती है। इस बार सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने इजाजत दे दी थी, पाकिस्तानी टीम को क्लियरेंस दे दी थी कि पाकिस्तान की टीम वहाँ वर्ल्ड T20 में जाएगी। लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन हुई है धर्मशाला में, जिस तरह वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी की जमानत नहीं दे सकते, और इस तरह की जिस तरह पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं चौधरी निसार अली, उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस तरह की कुछ जो थ्रेट्स हैं वो आई हैं तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, और ये बहुत ही सीरियस मामला है और जरूरी है कि फिर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी टीम है वो जाए वहाँ पे, देखे क्या सूरत हाल है, वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज हैं BCCI के लोग हैं उनसे बात करें, उनको जो भी ब्रीफिंग मिलेगी उसके बाद आके जब अपनी रिपोर्ट देंगे तो फिर ही हम अपनी टीम को जो है भेजेंगे। सिर्फ पाकिस्तान की मर्दों की टीम भी है और खवातीन टीम भी है, खवातीन टीम ने भी ट्रेवल करना था लेकिन उनको कहा गया है कि वो अभी ना जाएं जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाती और ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती।
बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो इंडिया पाकिस्तान को खेलते देखना चाहते हैं, पाकिस्तान में इसको लेकर कैसा माहौल है?
बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, अभी जिस तरह एशिया कप में मैच हुआ या इससे पहले एडिलेड में जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ था तो एक्साइटमेंट तो अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात में, जिस तरह बीच में जो सूरत हाल हुई जब शहरयार खान इंडिया गए थे BCCI के सदर शशांक मनोहर से मिलने, उससे पहले कुछ देर पहले ही BCCI के दफ्तर पर जो है वो अटैक हुआ, और फिर पाकिस्तान के जो फॉर्मर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं खुर्शीद महमूद कसूरी, उनकी किताब की जो तकरीब थी उसका जो एक वाकया हुआ, फिर पाकिस्तान के जो सिंगर हैं गुलाम अली उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनको वो डिस्टर्ब हुए, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है और मिनिस्ट्री जो है वो पूरी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर ये भी देखा कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बार बार मिल रहे हैं, मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे तक जाने की जो बातें हो रही हैं, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन था। तो इसीलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इजाजत दे दी थी। लेकिन जो चेंज आया है इस सिचुएशन में वो आया है हिमाचल प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके स्टेटमेंट के बाद। लेकिन जहां आपने बात की कि क्रिकेट के जो शायकीन हैं उनकी जो एक्साइटमेंट है वो अपनी जगह मौजूद है, यहाँ अभी भी लोग जो हैं वो बेताब हैं कि किसी तरह हमें वीजे मिल जाएं, हमें मैच का टिकट जो है वो इस तरह हो मिल जाए और हम ट्रैवल करें, जाएं वहां जाके हम मैच से एंजॉय करें। लेकिन अब ये उसी सूरत में होगा कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट फैसला करेगी।
इस्लामाबाद से ये थे बीबीसी उर्दू सेवा के अब्दुल रशीद शकूर। और आपको ये भी बताता चलूं कि खेल की दुनिया का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हम आपको अपने दूसरे कार्यक्रम में सुनवाएंगे।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड यानी 5980, 7395, 11995, 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब चलते हैं गुजरात। गुजरात में चरमपंथी हमलों की आशंका को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि चरमपंथी आज महाशिवरात्रि के दौरान राज्य में गड़बड़ी फैला सकते हैं। इसे लेकर सोमनाथ मंदिर समेत कई स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। NSG की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। इस वक्त चलते हैं हम अंकुर जैन के पास, जो टेलीफोन लाइन के जरिए हमारे से जुड़े हुए हैं। अंकुर, बताएं कैसी सुरक्षा व्यवस्था है वहाँ?
बिल्कुल इकबाल जी, शनिवार शाम को जब इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा गुजरात सरकार से एक इनपुट शेयर हुआ था कि आपके कच्छ बॉर्डर से गुजरात में कुछ फिदायिनों ने दाखिला लिया है, उसके बाद से ही गुजरात मानो पुलिस छावनी में कन्वर्ट हो चुका है। 4 NSG की टुकड़ियां गुजरात भेजी गई हैं, जिसमें से 1 सोमनाथ मंदिर पर है और 3 को अहमदाबाद में स्टैंड बाय पर रखा गया है। वही अहमदाबाद समेत गुजरात के सभी शहरों में और हाईवे पर पुलिस की चेकिंग रविवार से ही इंटेंस कर चुकी है। शनिवार देर रात से ही हर एक चेक पॉइंट पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट के हर एक शहरों पर चेकिंग बढ़ चुकी है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को कई ठिकानों पे पुलिस ने रेड भी की थी, जिसमें खास करके गुजरात के जो बॉर्डर इलाके हैं, जो कच्छ के आसपास, पोरबंदर के आसपास जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, वहां पर कई गांव में पुलिस द्वारा रेड भी की गई थी। कई छिटपुट वाक्यों में ये खबर भी है कि कुछ चेक पोस्टों पे लोग जब उस बैरिकेड को पार करके जाने की कोशिश कर रहे थे तो एक दो फायरिंग के इंसिडेंट्स भी कुछ रिपोर्ट हुए हैं। और सिक्योरिटी इंटेंस है सभी रेलवे स्टेशनों पर, एयरपोर्टों पर भी सिक्योरिटी इंटेंस कर चुकी है
जी। अंकुर, अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, के जाहिर एहतियात बरतनी चाहिए और सुरक्षा के मामले में कोई लापरवाही तो नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आम जनता जो गुजरात की है वो कहीं इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था देकर के डरी सहमी हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं है?
जनता बिल्कुल, क्योंकि रविवार पूरे दिन सोशल मीडिया पे ये मैसेज सर्कुलेट होता रहा और वहीं राज्य सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने लोगों से अपील भी की कि वो सतर्क रहें और कहीं भी कुछ मूवमेंट, संदिग्ध मूवमेंट दिखे तो तुरंत पुलिस को इत्तला की जाए। तो इस वजह से लोगों में भय का माहौल जरूर था, लेकिन आम जनजीवन जिस तरह था उस तरह चला, लेकिन लोगों में भय का माहौल जरूर है। क्या शिवरात्रि को लेकर जो गुजरात में बहुत बड़ा पर्व है और फिर हर शहरों में मनाया जाता है, तो उसको लेकर लोगों में चिंता जरूर बनी
जी। बहुत शुक्रिया अंकुर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और हालांकि खुफिया एजेंसी की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि दिल्ली भी कहीं ना कहीं निशाने पर हो सकती है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और अब बात उन खबरों की जिन पर रहेगी हम सबकी नजर आज।
वर्ल्ड कप T20 की सुरक्षा का आकलन करने के लिए पाकिस्तान की 3 सदस्यीय टीम आज भारत आ रही है। ये टीम 3 दिन भारत में रहकर बुधवार को अपनी रिपोर्ट देगी। इस टीम के प्रमुख उस्मान अनवर होंगे, जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वरिष्ठ डायरेक्टर हैं। टीम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारत में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी भी होंगे। हरियाणा के गुड़गांव में आज से हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 शुरू हो रहा है। इसमें कई देशों के प्रतिनिधि और राजनयिक हिस्सा लेंगे, जिनमें पेप्सिको की चेयरमैन इंदिरा नुई भी शामिल हैं। दो दिन चलने वाले समिट में चेक रिपब्लिक, जापान, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया, मलावी, पेरू, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और ट्यूनीशिया जैसे देशों की भागीदारी रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इसके मुख्य अतिथि होंगे। 1% एक्साइज ड्यूटी का विरोध कर रहे देश भर के सुनारों की हड़ताल आज भी जारी रहेगी। ऑल इंडिया ज्वेलरी एसोसिएशन ने देश के अलग अलग राज्यों की इकाइयों के साथ मिलकर इस महीने की 2 तारीख को हड़ताल की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने बाद में 7 मार्च तक बढ़ा दिया था। इस बार के बजट में सरकार ने कीमती पत्थरों और ज्वेलरी पर 1% की एक्साइज ड्यूटी फिर से लागू करने का फैसला लिया है, जिसका सुनार विरोध कर रहे हैं। भारत में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। शिव और पार्वती के विवाह के मौके पर मनाए जाने वाले इस पर्व पर हिंदू धर्म के अनुयायी विभिन्न धर्म स्थलों पर स्नान करेंगे। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी मार्केट महाशिवरात्रि के मौके पर बंद रहेंगे। माओवादियों ने आज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दंडकारण्य इलाके में बंद का आयोजन किया है। ये बंद छत्तीसगढ़ में 1 मार्च को 9 माओवादियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के विरोध में रखा गया है। ये मुठभेड़ दक्षिण बस्तर के बॉटम गांव में हुई थी, जिसे माओवादियों ने फर्जी मुठभेड़ करार दिया है।
और अब बात महिलाओं की। दिल्ली में देश भर की महिला जन प्रतिनिधियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला नीति विकास पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि महिलाओं को अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक पर कुछ नहीं कहा। इसे लेकर विपक्षी दलों की कई जन प्रतिनिधियों ने निराशा जाहिर की। एक रिपोर्ट के साथ हरिता कांडपाल।
महिला जनप्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान और उनकी नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की। मोदी ने महिला जनप्रतिनिधियों से कहा कि वो स्वतंत्र छवि बनाने का प्रयास करें।
आवश्यक ये है कि हम स्वयं को पहचानें। हम अपनी शक्तियों को तब तक नहीं पहचानते हैं जब तक हमें चुनौतियों से जूझने का अवसर नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर सोच बदलने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि महिलाएं स्वयं में सशक्त होती हैं।
ये जो महिला सशक्तिकरण, ये मनोवैज्ञानिक अवस्था को बदलने की आवश्यकता मुझे लगती है। सशक्तिकरण उनका होता है जिनका सशक्त नहीं, लेकिन जो इन सशक्त है उनका सशक्तिकरण कौन करेगा? और ये बात मेरे गले नहीं उतरती कि पुरुष होते कौन है जो सशक्त करेंगे।
हालांकि प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक पर कुछ नहीं कहा। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की पहल पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने की जरूरत पर जोर दिया था। राष्ट्रपति ने कहा था,
आई डू फील वी डू ए ग्रेट जॉब इफ वी ट्राई टू रिवाइव।
मुझे लगता है कि अगर हम संविधान में जरूरी संशोधन करते हुए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में 1/3 आरक्षण के लिए महिला प्रतिनिधित्व विधेयक को दोबारा लाने की कोशिश करते हैं, तो हम एक बहुत बड़ा काम करेंगे। प्रतिनिधित्व के बिना सशक्तिकरण कैसे हो सकता है?
सम्मेलन में जुटी जनप्रतिनिधियों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस मुद्दे पर कुछ कहेंगे, लेकिन मोदी ने इस विषय पर कुछ नहीं कहा। इसे लेकर विपक्षी दलों की कई जनप्रतिनिधियों ने निराशा जाहिर की। कांग्रेस की नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा,
जब प्रधानमंत्री जी इस पूरे मुद्दे से बिल्कुल बच के निकल गए, उन्होंने एक शब्द इस संदर्भ में नहीं बोला। हमारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ उसमें भी महिला आरक्षण विधेयक के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, तो एक तरह से हम निराश हैं।
वहीं आम आदमी पार्टी की दिल्ली में विधायक अलका लांबा ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पर प्रधानमंत्री के कुछ न बोलने से आधी आबादी निराश हुई है।
उन्होंने बहुत लंबा भाषण दिया, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी महिला आरक्षण पर, वो कुछ बोलेंगे, लेकिन उसमें हम सभी के हाथ में बहुत निराशा हाथ में लगी।
अलका लांबा ने कहा कि लोकसभा में पूर्ण बहुमत रखने वाली मोदी सरकार के पास अभी विधेयक पास कराने के लिए 3 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस दौरान महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में 1/3 प्रतिनिधित्व देने की पहल हो पाएगी।
तो मोदी का लंबा भाषण, लेकिन हाथ लगी निराशा।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। यूरोपियन यूनियन और तुर्की की बैठक के मौके पर यूरोप में शरणार्थी संकट से निपटने के लिए नेटो ने ईजियन सागर में अपने अभियान के विस्तार का फैसला किया है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए अजय शर्मा से।
ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्स सिप्रास ने कुछ देशों पर आरोप लगाया है कि वो यूरोप को एक किले में तब्दील कर रहे हैं और शरणार्थी संकट से निपटने से इनकार कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन और तुर्की के नेताओं के बीच बैठक से पहले उन्होंने ये बात कही। सिप्रास का कहना है कि शरणार्थियों को दूसरे ईयू सदस्य देशों में भेजना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। चूंकि ग्रीस और मैसेडोनिया के बीच आइडोमेनी शरणार्थियों के लिए बंद है और तुर्की के किनारे से अलग अलग द्वीपों तक शरणार्थियों का हुजूम पहुंच रहा है, तो ये साफ है कि हमारे देश से यूरोपियन यूनियन के दूसरे देशों में शरणार्थियों को पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। यही वो चीज़ है जिसे लेकर हम सोमवार को हो रही बैठक में बात करना चाहते हैं। ये थे ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्स सिप्रास। बाल्कन के कई देशों ने हाल ही में अपने देश की सीमा में घुसने वाले लोगों की तादाद को सीमित कर दिया है। हजारों शरणार्थी ग्रीस की सीमा और मैसेडोनिया के बीच फंसे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था UNHCR के प्रवक्ता बाबर बलोच ने ग्रीस में कहा कि शरणार्थी भेदभाव झेल रहे हैं।
Each day we are seeing new restrictions. So now we are being told that Macedonians don't...
हर दिन हम नए प्रतिबंध देख रहे हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि मैसेडोनियाई लोग सीरिया, दमिश्क, तार्तुस, होम्स और दूसरे इलाकों जैसे लताकिया और इराक से आने वाले लोगों को घुसने नहीं दे सकते। उनकी नज़र में वो शरणार्थी नहीं हैं, जो गलत है। हम जानते हैं कि इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। वो सभी लोग शरणार्थी हैं और उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है। ये कहना है UNHCR के प्रवक्ता बाबर बलोच का। तुर्की के सरकारी मीडिया ने कहा है कि समुद्र के रास्ते ग्रीस पहुंचने की कोशिश कर रहे 18 लोग डूब गए हैं। एक दूसरे मामले में 368 लोगों को ग्रीस के द्वीप लेस्बोस पर बचाया गया। ग्रीस पुलिस ने बताया कि मैसेडोनिया ने अपने सीमा प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग फंसे हैं। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमेत दावुतोग्लू ने कहा कि कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि संकट को सुलझाया जा सके। काफ़ी प्रगति हुई है। तुर्की ने कुछ कदम उठाए हैं, यूरोपियन यूनियन ने भी कुछ कदम उठाने का फैसला किया है। हमारा मानना है कि ये मानवीय संकट है। तुर्की 5 साल से अपने हिस्से में आने वाले शरणार्थियों को ले रहा है। यूरोप इस संकट का हिस्सा 2015 में बना। हमें खुशी है कि अब यूरोप भी इस समस्या को समझ रहा है। ये थे तुर्की के प्रधानमंत्री अहमेत दावुतोग्लू के शब्द। सीरिया और इराक में चल रहे गृहयुद्धों की वजह से शरणार्थी संकट तेजी से बढ़ा है। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों में उन्हें अपनी सीमाओं में प्रवेश करने को लेकर काफ़ी समय से कशमकश चल रही है।
तो सीरियाई शरणार्थियों का संकट जारी। बहरहाल अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का, और अजय तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी बताएं अजय।
जी, आज तमाम अखबारों की जो पहली खबर है या प्रमुख खबर के तौर पर कहें, वो है टीम इंडिया का मीरपुर में बांग्लादेश को हराना 8 विकेट से। इसमें अलग अलग अखबारों ने अलग अलग तरीके से इसे पेश किया
कोई
है।
ऐसी कोई खूबसूरत सुर्खी जो आपको लगे?
सुर्खी तो नहीं, लेकिन नई दुनिया का एक उसने रिकॉर्ड की तरह एक पेश किया है, जिसमें दिखाया है कि पहली बार इस कप में क्या क्या हुआ है।
अच्छा, वो ये भारत है कि छठी बार जीता है।
हाँ, छठी बार जीता है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली टीम बन गई है, भारतीय टीम। श्रीलंका ने हालांकि इससे पहले 5 बार खिताब जीत चुकी है, और T20 प्रारूप में पहली बार एशिया कप का ये खिताब जीता गया है। और एशिया कप में भारत की बांग्लादेश के खिलाफ कुल 12 मैचों में ये 11वीं जीत है। इस तरह के कुछ आंकड़े पेश किए हैं, और इसके अलावा भी कुछ रिकॉर्ड बने हैं, जिसमें मुशफिकर रहीम बांग्लादेश के लिए 50 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उधर धोनी का कप्तान के तौर पर ये 200वां मैच था। इसके अलावा भारतीय टीम अब 8 मार्च से अपनी मेजबानी में शुरू होने वाली T20 विश्व कप में हिस्सा लेगी। इस खबर के अलावा जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है देश में आतंकियों के घुसने का अंदेशा, उसे लेकर अलग अखबारों ने उसे अलग अलग तरीके से सुर्खी बनाया है और उसे भी पहले पन्ने पर जगह दी है। जैसे जनसत्ता जो है उसने सेकंड लीड की तरह लिया है इसको, और ये बताया है कि सूत्रों के मुताबिक गुजरात में महाशिवरात्रि पर प्रमुख मंदिरों और धार्मिक जुलूसों पर 26/11 जैसे आतंकी हमलों की आशंका के बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की ओर से खुफिया सूचनाएं मुहैया कराई गई थीं, जिसके बाद ये अलर्ट जारी हुआ और उसके अलावा NSG की टीमें गुजरात भेजी गई हैं। इसके अलावा एक मुजफ्फरनगर दंगों के लिए अफसर दोषी, इस तरह की एक खबर
रिपोर्ट है जी। बहुत शुक्रिया अजय आपका अखबारों की समीक्षा का के लिए। और अब कुछ खास, जे एन यू विवाद के बाद एक नारा जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी वो है हमें चाहिए आज़ादी। लेकिन सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबके अपने अपने दावे, कोई इसे कश्मीरी अलगाववादियों से जोड़ रहा तो कोई नक्सलवादियों से, ऐसे में भला महिलाएं क्यों पीछे रहती। उन्होंने भी कह दिया कि इसका असल संबंध तो महिला आंदोलन से है और वो भी पाकिस्तान से। तो सुनिए इस बारे में क्या कहते हैं पाकिस्तान से हमारे सहयोगी वसतुल्ला खां अपनी आज की डायरी में।
और अब ये बहस छिड़ गई है कि कन्हैया कुमार जेएनयू में सब मिलकर बोलो आज़ादी सीरीज के जो नारे लगवा रहा है उनका ओरिजिन क्या है। अक्सर भारतीय समझते हैं कि ये नारा कश्मीरी आंदोलन से जुड़ा है। दक्षिण एशिया में महिला संगठन का एक आदरणीय नाम कमला भसीन कहती हैं कि उन्होंने ये नारा 1991 में लगाया कि सब बहनें मांगें आज़ादी, और ये नारा कमला जी ने पाकिस्तानी महिलाओं से सुना। मगर पाकिस्तानी महिलाओं ने भी तो ये नारा कहीं से सुना होगा। मुझे याद पड़ता है कि ये नारा 1968 में अय्यूब खान की डिक्टेटरशिप के विरोधी छात्रों ने भी पिंडी से कराची तक की सड़कों पे खूब लगाया, और ये नारा लगाने वालों में सबसे आगे आगे कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़ी नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के छात्र थे। उसके बाद आज़ादी मांगो सीरीज का पेटेंट आम होता गया और इतना आम हो गया कि जमाते इस्लामी से जुड़ा छात्र संगठन इस्लामी जमीयत तलबा सबसे ज़्यादा आज़ादी मांगो गुट हो गया। और तो और इस्लामी जमीयत ने फैज़ अहमद फैज़ को भी सुर्खों से छीन के उन पे हरा रंग फेर दिया। फिर हर तरह का मौलवी लाजिम है कि हम भी देखेंगे गाने लगा। और आज जेएनयू को देख के तो यूं लगता है कि फैसा पैदा ही इसी कैंपस में हुए थे। भारतीय क्रांतिकारी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के ज़माने में क्या नारे लगाते थे हमें नहीं मालूम। बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों के माध्यम से पाकिस्तानियों को बस एक ही नारा सुनाई देता था कि कुछ मजदूर दलीप कुमार या बच्चन जी जैसे मजदूर नेता की लीडरी में बड़ी मरियल सी आवाज़ में नारा लगा रहे हैं, हमारी मांगें पूरी करो। अब बताइए ये भी कोई नारा हुआ? चूंकि आज़ादी के बाद हमारा मार खाने का तजुर्बा सीमा पार क्रांतिकारियों से ज़्यादा है, इसलिए नारे भी एक के बाद एक और अनेक बनते चले गए। पाकिस्तानी आंदोलनियों की खुशकिस्मती ये रही कि फैज साहब का बोल के लब आज़ाद हैं तेरे हाईजैक हुआ तो हबीब जालिब सामने आ गए और उन्होंने हम जैसे शरारती बच्चों को कहाँ कातिल बदलते हैं फ़कत चेहरे बदलते हैं जैसा नारा दे दिया। फिर अहमद फराज आ गए, पेशावर कातिलो तुम सिपाही नहीं। जब ज़ियाउल हक का ज़माना आसमान पर था तो सिवाय कराची प्रेस क्लब और कराची यूनिवर्सिटी के हर तरफ सन्नाटा था, और इस सन्नाटे में जब हज़ारों लड़के लड़कियां एक आवाज़ में नारा लगाते थे ज़ियाउल हक को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है, तो गुप्तचर संस्थाओं के लिए रिपोर्ट बनाने वाले ही नहीं दरो दीवार भी हिल के रह जाते थे। चलिए हमने ये वाला नारा भी जेएनयू छात्रों को बिना पेटेंट दान किया। अब वो इस नारे में ज़ियाउल हक की जगह किस किस को जोड़ते हैं इससे हमें क्या, हम तो बस इतना ही जानते हैं कि जब कोई रखता ना हो अपने पड़ोसी का ख्याल फ़ायदा क्या है ये दीवार मिला रखने से।
तो ये थे पाकिस्तान से वसतुल्ला खान। और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। बांग्लादेश के मीरपुर में खेले गए एशिया कप फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया है। यूरोपियन यूनियन और तुर्की की बैठक के मौके पर यूरोप में शरणार्थी संकट से निपटने के लिए नेटो ने ईजियन सागर में अपने अभियान के विस्तार का फैसला किया है। चैरिटी संस्था मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स उत्तरी फ्रांस में 1500 लोगों के लिए एक शरणार्थी शिविर खोल रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की पत्नी नैन्सी रीगन की 94 साल की आयु में मृत्यु हो गई है। उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी है कि अगर दक्षिण कोरिया और अमेरिका इस हफ्ते अपना सालाना संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगे तो वो उन पर परमाणु हमले करेगा। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के इराकी शहर हिल्ला में किए गए आत्मघाती बम धमाके में 47 लोगों के मारे जाने की खबर है। सीरिया के सरकारी मीडिया ने कहा है कि अलेप्पो शहर के एक बाजार में रॉकेट दागे गए जिसमें 14 लोग मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद कार्यक्रम विश्व भारती में। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।